श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सभी आज का बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से भजन संहिता नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, आज के बाइबल अध्ययन की ओर ध्यान लगाएं और आत्मिक लाभ प्राप्त करें।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए आनंदित हैं और कुशल पूर्वक हैं। आज फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सुनने के लिए और सीखने के लिए आप तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम इन दिनों बाइबल में से भजन संहिता नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले दिनों में हमने अध्याय 30 का अध्ययन किया था, जिसमें हमने परमेश्वर के भक्त भजनकार के द्वारा से परमेश्वर के क्रोध क्षणभंगुर होने के बारे में देखा, जो कुछ समय के लिए होता है, फिर परमेश्वर उसे भुलाकर हमें आशीषें देता है, रोग मुक्त करता है। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, जिसे आपने हम सबके जीवन में फिर से एक बार दिया है ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन करें। हाँ प्रभु, हम इस बात को जानते हैं कि हम मनुष्य हैं, दुर्बल हैं, कमजोर हैं, हमारे पास इतना ज्ञान नहीं कि आपकी उन वचन की बातों को समझ सकें। हमारी विनती है कि आप हम सबको अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि आज हम जो कुछ भी सीखते हैं निश्चित रूप से हम उसे अपने जीवन में ग्रहण कर सकें। हाँ पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार हैं, चिंतित हैं, निराश हैं, किसी न किसी रूप में तनाव में है। आप उनकी सहायता करें, उनकी सुधि ले, अपने वचन के द्वारा बोले और बातचीत करें, ताकि हम में से प्रत्येक इस बात को समझ सके कि आप हमसे प्रेम करते हैं, आप हमारी चिंता करते हैं, आप वही परमेश्वर हैं जो हमें शांति, आनंद और छुटकारा देना चाहते हैं। हाँ प्रभु, इस समय आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और अध्याय 31 से अपने अध्ययन को हम देखेंगे। आज का विषय है संकट से मुक्ति की प्रार्थना। अधिकांश भजन अपरिचित तो हैं, परंतु वे परमेश्वर के वचन के अति ज्ञानवर्धक अंश हैं। मेरे विचार में यदि इस भाग पर उचित ध्यान दिया जाए तो यह धर्मशास्त्र का एक भिन्न परिदृश्य प्रस्तुत करेगा, विशेष करके इसराइल राष्ट्र के लिए परमेश्वर के उद्देश्यों के संबंध में। मेरे प्रियो, अब तक हमने जितने भी भजन देखे हैं वे सब दाऊद के भजन थे और अति संभव है कि उसने उन्हें संगीत से भी संवारा था। प्रत्येक भजन का हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से विशेष अर्थ है। इस भजन में भी हम भक्त जन को कष्टों में देखते हैं और अब तक तो भजनों में यह बहुत अधिक देखा गया है और अंततः भक्तजन संकटों से जूझता हुआ दिखाई देता है या रहता है। कम से कम जिन्हें मैं जानता हूं वे तो संकटों से जूझते ही रहे हैं। भजन संहिता 31 में दाऊद के कष्ट हैं जो उसने पूर्व काल में झेले थे। यह भजन भविष्य में महाक्लेश के समय इसराइल के संकटों की चर्चा भी करता है। अंत में यह भजन हमारे आज के कष्टों का वर्णन भी करता है। इस भजन में आपके और मेरे लिए संदेश निहित है। जब मुझे रात में नींद नहीं आती है तब मैं भजनों को पढ़ता हूँ, विशेष करके इस भाग को, और मुझे महान सांत्वना प्राप्त होती है और सहायता भी मिलती है। तो आइए आप मेरे साथ भजन संहिता 31 उसके एक पद को पढ़ें। लिखा है, हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े, तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। ध्यान दीजिए, अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। दाऊद जानता था कि परमेश्वर पापियों को बचाने के लिए अपना मानदंड कम नहीं करेगा। पाप को दंड की आवश्यकता थी। यदि पाप दंड न भोगे तो उसके स्थान पर किसी और को दंड भोगना होगा। परमेश्वर के पास एक योजना थी जिसमें वह पापियों का उद्धार कर सकता था, क्योंकि किसी ने पापों का दंड भोगा था। यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह था। जी हाँ, यही कारण था कि दाऊद कहता है भजन संहिता 31 उसके 2 पद में, अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले। हमें कंकड़ पत्थर नहीं, दृढ़ चट्टान की आवश्यकता है। मत्ती रचि सुसमाचार 16 अध्याय उसके 15 से 18 पद में यीशु ने कहा, तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पत्रस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पत्रस है, और मैं इस पत्थर अर्थात चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। जिस चट्टान पर कलीसिया बनाई गई है वह प्रभु यीशु है। पहला कुरिन्थियों के पत्री 3 अध्याय उसके 11 पद में पौलुस कहता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। जी हाँ, उद्धारक प्रभु यीशु मसीह वह दृढ़ चट्टान है जिसके ऊपर हम निर्भर कर सकते हैं। मुझे एक भद्र महिला की बात याद आती है। उसने अपने उद्धार और उसके आश्वासन की चर्चा करते हुए कहा, ऐसा भी समय होता है जब मैं डरती हूँ और चट्टान पर खड़ी कांपती हूँ, परंतु मेरी चट्टान मेरे नीचे कांपती नहीं है, वह दृढ़ चट्टान है। मेरे मित्रों, दाऊद ने चट्टान की चर्चा अभी समाप्त नहीं की है। उसके पास कहने को अभी और भी है। आप इस भजन को चट्टान का संगीत भी कह सकते हैं। तो आइए हम भजन संहिता 31 उसके 3 पद को पढ़ें। क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है, इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। क्या प्रभु परमेश्वर आपकी चट्टान है? क्या आज आप उन पर निर्भर हैं? क्या वह आपका गढ़ है? गढ़ सुरक्षा के लिए होता है, आपको इसकी आवश्यकता है। जी हाँ, अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर, इसलिए नहीं कि मैं राजा दाऊद हूं, परंतु अपने नाम के निमित्त। भजन संहिता 31 उसके 4 पद में लिखा है, जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है उससे तू मुझको छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए, जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है उससे तू मुझको छुड़ा ले। हो सकता है कि आपके जीवन में भी कुछ लोग ऐसे जाल बिछा रहे हैं। आप भी कह सकते हैं कि प्रभु मुझे उस जाल से, उस फंदे से छुड़ा ले। भजन संहिता 31 के 5 पद में लिखा है, मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूं। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। मेरे मित्रों, हमारे प्रभु के क्रूसीकरण के समय का वृतांत है जिसे हम लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसके 46 पद में पढ़ते हैं। यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। पहला मसीही शहीद स्तेफनुस के पत्थरवाह का वृतांत है जिसे हम प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसके 59 पद में पाते हैं। वे स्तेफनुस पर पत्थरवाह करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। मेरे प्रियो, यह बड़ी रोचक बात है कि कलीसिया के इतिहास में अनेक शहीदों ने अंतिम वाक्य यही कहा है। उदाहरण के लिए, जब जॉन हस को अवमानना का दंड दिया गया था, तब बिशप ने उसके लिए ये भयानक शब्द कहे थे, हम तेरी आत्मा शैतान को सौंपते हैं। जॉन हस ने शांत मुद्रा में खड़े होकर कहा, हे प्रभु यीशु, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरे प्रियो, मैं जिसे तूने मुक्ति दिलाई, उसी के हाथों में मैं अपनी आत्मा सौंपता हूँ। स्मरना में जब पॉलीकार्प को जलाया जा रहा था, तब उसके शब्द भी यही थे। वर्न डे ने प्रेग के जेरोम में, लूथर ने मलाक्थन और अनेकों ने भी यही शब्द काम में लिए। मार्टिन लूथर ने वास्तव में यह कहा, धन्य है वे जो केवल प्रभु के ही लिए नहीं शहीद होते, विश्वासी होने के नाते प्रभु में ही नहीं परंतु इसी प्रकार प्रभु के साथ जैसे वचनों द्वारा जीवन की सांस लेते हैं, तेरे हाथों में मैं अपनी आत्मा सौंपता हूँ। भजन संहिता 31 उसके 7 पद में लिखा है, मैं तेरी करुणा से मग्न और आनंदित हूँ क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है, मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है। डॉक्टर गैबेलिन ने इस पद को थोड़ा बदल दिया था, तूने मेरे कष्टों को देखा है, तूने मेरी आत्मा को प्रतिकूल स्थिति में देखा है। मुझे यह अधिक अच्छा लगता है। भजनकार दो बार कहता है, यह एक महान शांतिदायक बात है कि परमेश्वर आपको कष्टों में देख रहा है। स्मरण रखें कि परमेश्वर जब इसराइल को मिस्र से मुक्ति दिलाना चाहता था, तब उसने मूसा से कहा, जिसे हम निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय उसके 7 और 8 पद में देखते हैं, मैंने अपनी प्रजा के लोगों को जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उनको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश में निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचाऊं। परमेश्वर ने अपनी प्रजा के कष्टों को देखा था, उसने उनका कराहना सुना था, वह उनकी दुर्दशा जानता था, अतः वह उन्हें छुड़ाने के लिए उतर आया था। मेरे प्रियो, सुसमाचार में वह वृतांत व्यक्त है जब चेले रात के अंधकार में गलील सागर की लहरों से संघर्षरत नाव पर चले जा रहे थे। इसी संदर्भ में मरकुस लिखता है 6 अध्याय उसके 48 पद में, जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया। यही बात तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। वह आज भी आपको और मुझे देखता है, वह हमारे कष्टों को देखता है, चाहे वे कैसी भी भयानक कठिन क्यों ना हो, वह शांतिदायक बात कहता है। मेरे प्रियो, अब यह एक प्रार्थना है। भजन संहिता 31 उसके 9 पद में लिखा है, हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं संकट में हूं, मेरी आंखें वरन मेरा प्राण और शरीर सब शोक के मारे घुले जाते हैं। मित्रों, क्या आप कष्टों में घिरे हुए हैं? कुड़कुड़ाने और सबसे शिकायत करने की अपेक्षा आप प्रभु से क्यों नहीं कहते, हे प्रभु, मैं कष्टों से परेशान हूं। यही तो दाऊद ने भी किया। क्या आज आप ऐसा कर सकते हैं? भजन संहिता 31 के 15 पद में लिखा है, मेरे दिन तेरे हाथ में है, तू मुझे मेरे शत्रुओं और सताने वालों के हाथ से छुड़ा। मेरे दिन तेरे हाथ में है, यह बड़ी ही रोचक अभिव्यक्ति है। मनुष्य पराया हस्तरेखा पढ़वाने जाते हैं, उन्हें रेखाओं के विषय जानकारी दी जाती है, यह रेखा इसकी, यह रेखा उसकी, आदि आदि बातें हैं। यह है तो व्यर्थ की बात, परंतु जीविकोपार्जन का एक अच्छा साधन है। कहने का मतलब है कि आप अपने जीवन को चलाने के लिए इस प्रकार के काम कर सकते हैं, और वे जो पैसे लुटाना चाहते हैं उनके लिए भी एक अच्छा साधन है। सच तो यह है कि मेरे दिन तेरे हाथ में हैं। ये हाथ क्रूस पर कीलों से छेदे गए थे। मैं उसके हाथों में अपने पाप देखता हूं और वे एक चरवाहे के कोमल हाथ हैं। उसने एक खोई हुई भेड़ को उठाया और कंधों पर रखा। मेरी सुरक्षा और देखरेख उसी की हाथों में है। वह एक दिन आएगा और आशीषें साथ लेकर आएगा, और वही हाथ आशीष हमें देगा। मेरे मित्रों, मैं अति आनंदित हूं कि मेरा समय उसके हाथों में है। भजन संहिता 31 उसके 16 पद में लिखा हुआ है, अपने दास पर अपने मुंह का प्रकाश चमका, अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर। अपने दास पर अपने मुंह का प्रकाश चमका, यह एक मनोहर अभिव्यक्ति है। प्राचीन समय में एक इब्रानी के टीकाकार ने कहा, परमेश्वर का चेहरा उसका अभिषिक्त हमारा मसीह है। परमेश्वर आत्मा है। मैं नहीं जानता कि वह कैसा दिखता है या कैसा अनुभव करता है या वह कैसे काम करता है, परंतु प्रभु यीशु यहां आया कि हम पर परमेश्वर को प्रकट करे। वह परमेश्वर का चेहरा है। उसके द्वारा हम परमेश्वर को जानते हैं। एक छोटी बालिका को उसकी माता ने बिस्तर में सुला दिया। जब वह रोने लगी तब माता ने उससे कहा, सो जा, परमेश्वर तेरे साथ है। परंतु वह अपनी माता को ही चाहती थी कि वह वहां रहे। माँ ने फिर उससे कहा, चुप हो जा, परमेश्वर तेरे साथ है। उसने कहा, मैं जानती हूँ वह है, परंतु मुझे उसका चेहरा देखना है। मेरे मित्रों, हम सबको यही चाहिए। हम सब बच्चों को किसी का चेहरा देखना है। प्रभु यीशु चेहराधारी परमेश्वर है जिसे हम देख सकते हैं। भजन संहिता 31 उसके 19 पद में हम पढ़ते हैं, आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। परमेश्वर की भलाई कैसी महान है। क्या आपने कभी किसी से कहा कि परमेश्वर कैसा भला है? भजन संहिता 107 उसके 1 और 2 पद में लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। मेरे प्रियो, मनुष्य सबके बारे में बात करता है, पड़ोसी, बच्चे, माँ बाप, अपने बॉस, प्रचारक, परंतु परमेश्वर के बारे में, उसकी भलाई के बारे में अधिकांश जन कोई भी चर्चा नहीं करते हैं। ओह, वह कैसा भला है। वह अंतिम समय कब था जब आपने किसी को परमेश्वर के बारे में, उसकी भलाई के बारे में बताया है? क्या आपको याद है? मेरे मित्रों, अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे भजन संहिता 32 उसके परिचय को, जिसका विषय है निर्देशों का भजन। इस भजन को आत्मिक रत्न कहा गया है। इसके उपरांत भी इसे गलत समझा गया है। इसका शीर्षक है दाऊद का भजन। मश्किल या मश्किल का अर्थ है निर्देश देना या बुद्धि ग्रहण करना। इब्रानी भाषा का यह शब्द विशेष करके तब काम में लिया जाता था जब इसराइल के भविष्य की बात की जाती थी। मैं आज के सेमिनरियों अर्थात बाइबल कॉलेज के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकता जब वहां विद्वानों और प्रगतिशील कार्यक्रमों के साथ बौद्धिकता का वातावरण है। वे केवल बौद्धिक बातों पर बल देते हैं। अच्छा होगा कि वे इस भजन पर ध्यान दें और समझें कि परमेश्वर की योजना में इसराइल का भविष्य है, परंतु इसके लिए उन्हें आत्मिक अभिषेक की आवश्यकता है। मेरे मित्रों, मैं चाहता हूं कि आप देखें यह शब्द मश्किल इसराइल के संबंध में कैसे काम में लिया गया है। दानियल नबी की पुस्तक 11 अध्याय उसके 33 पद में लिखा है, लोगों को सिखाने वाले अर्थात मश्किल बुद्धिमान जन बहुतों को समझाएंगे तो भी वे बहुत दिन तक तलवार से छिदकर और आग में जलकर और बंधुए होकर और लूटकर बड़े दुख में पड़े रहेंगे। और तब 35 पद में वह कहता है, और सिखाने वाले मश्किल में से कितने गिरेंगे और इसलिए गिरने पाएंगे कि जांचे जाएं और निर्मल और उजले किए जाएं। यह दशा अंत के समय तक बनी रहेगी क्योंकि इन बातों का अंत नियत समय में होने वाला है। दानियल नबी की पुस्तक 12 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, तब सिखाने वालों अर्थात मश्किल की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। तब हम देखते हैं 12 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, बहुत से लोग तो अपने को निर्मल और उज्जवल करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे और दुष्टों में से कोई ये बातें न समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान मश्किल है वे ही समझेंगे। हम मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 15 पद में भी पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु यीशु इसराइल के भावी कष्टों के विषय में कहते हैं, इसलिए जब तुम उसे उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे मश्किल। प्रभु के कहने का अर्थ था कि दानियल द्वारा पूर्व कथित उजाड़ने वाली घृणित वस्तु जब मंदिर में देखी जाए, तब जान बचाकर भागने का समय होगा। मैं नहीं जानता कि यह घृणित वस्तु क्या है। मैंने कुछ विद्वानों की पुस्तकों में पढ़ा है, इस विषय में लिखा है, परंतु अध्यायों के पश्चात वे यही प्रकट करते हैं कि वे नहीं जानते कि वह वस्तु क्या है। मैं इसे एक वाक्य में कहता हूं, मैं नहीं जानता यह क्या है। मैं इस घृणित वस्तु को देखने की प्रतीक्षा में हूं। मेरे प्रियो, मैं प्रभु यीशु की प्रतीक्षा में हूं। ध्यान दीजिए कि मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 15 पद के अंत में प्रभु यीशु ने कहा था, जो पढ़े वह समझे। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक अध्याय 6 से 18 में महाक्लेश का विस्तृत उल्लेख किया गया है। अध्याय 13 में दो पशुओं और वैश्विक शासक का उल्लेख किया गया है। वहां लिखा है, प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 3 अध्याय उसके 18 पद में, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसके अंक 666 हैं। इस अंक 666 के ऊपर अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि इसका अर्थ क्या है? मेरा उत्तर है, मैं नहीं जानता। इस विषय पर जितनों ने लिखा है वे सोचते हैं कि वे जानते हैं, परंतु वे भी नहीं जानते। यह वह दिन होगा जब परमेश्वर अपने लोगों पर प्रकट होगा। अतः भजन संहिता 32 मश्किल का भजन है। यह परमेश्वर के मानने वालों के लिए निर्देशन है। इस समय यह भजन हमारे लिए निर्देशों का भजन है। जी हाँ, भजन संहिता 32 को पश्चाताप का भजन भी कहा गया है और दाऊद का अंगीकार भी, परंतु मैं इससे सहमत नहीं हूँ। भजन संहिता 51 दाऊद के पश्चाताप का भजन है, अंगीकार का भजन है। जब नातान ने उससे कहा था, तू ही वह मनुष्य है, जिसे हम दूसरा शामिल के पुस्तक 12 अध्याय उसके 7 पद में पढ़ते हैं, उस भजन में वह क्षमा की याचना करता है। भजन संहिता 32 क्षमा प्राप्ति और उसके पुनरुद्वार की धन्यवाद का विवरण है। भजन संहिता 51 12 से 13 पद में दाऊद कहता है, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। मेरे मित्रों, दाऊद यहाँ प्रतिज्ञा करता है कि यदि परमेश्वर उसे पापों की क्षमा दे तो वह पापियों को उसका मार्ग समझाएगा, और भजन संहिता 32 में दाऊद यही करता है। अतः यह भजन पश्चाताप का नहीं परंतु निर्देशन का भजन है। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि यह भजन हमें निर्देशन देता है ताकि हम उसके अनुसार से चल सकें। ये इसकी पृष्ठभूमि है जो हमारे लिए बहुत ही रुचिकर रही है। आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक आशीषों को प्राप्त किया है। कृपया आप अगले अध्ययन में अवश्य ही बैठें ताकि हम इस क्षमा प्राप्ति की आशीष को देखने पाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे एवं सहायता प्रदान करें।
मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगी, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगी,
श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
मैं आपकी अपनी